आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सिर्फ ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। भीष्म ने काशी नरेश की बेटी अंबा को पूरी सुरक्षा के साथ शाल्वराज के पास मार्तिकावत पहुंचा दिया था। इसके बाद दोनों राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर से हो जाता है। इस विवाह से राजमाता सत्यवती को बहुत खुशी होती है। वो मंत्रियों को आज्ञा देती हैं, हस्तिनापुर की सारी प्रजा को भेंट और उपहार देने के लिए राज्य के भंडार खोल दिए जाएं, उत्सव उल्लास के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। राजा विचित्र वीर दो दो इतनी सुंदर रानियों को पाकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों रानियों को साथ लेकर नई नई जगहों पर घूमने फिरने में आनंद मौज मस्ती में और भोग विलास में पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं। माता सत्यवती भी यही चाहती थी कि पुरु वंश को आगे बढ़ाने वाला जल्दी से जल्दी इस दुनिया में आ जाए। वो भीष्म को गुप्त रूप से राजपाट संभालने की जिम्मेदारी पहले ही दे चुकी थी। भीष्म अपनी जिम्मेदारी निभाने में कब पीछे रहे हैं? सब कुछ बिल्कुल सही ढंग से चलता रहता है। यहां एक घटना का जिक्र कर लेना बहुत जरूरी है कि अंबा के मार्तिकावत पहुंचने के बाद वहां क्या हुआ। मार्तिकावत में अंबा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी अंबा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भीष्म का भरी सभा से अंबा को उठाकर ले जाना शाल्वराज के स्वाभिमान को चूर चूर कर चुका था। किसी और के द्वारा हरण की हुई राजकुमारी से विवाह करना शाल्वराज के सम्मान को धिक्कार रहा था। इसीलिए अंबा के लाख मनाने और विनती करने के बाद भी शाल्वराज ने अंबा को स्वीकार नहीं किया, उसे ठुकरा दिया। तब अपमानित अंबा किसी घायल नागिन की तरह क्रोध और बदले की ज्वाला में धधकती हुई सीधे हस्तिनापुर की राज्यसभा में पहुंचती है। भरी सभा में वो राजा विचित्र वीर से अपने लिए न्याय मांगते हुए कहती है, महाराज, मैं काशी राज की पुत्री अंबा बड़ी आशा लेकर आई हूं, आपसे न्याय मांगती हूं। मेरा दोष क्या है? मुझे किस अपराध का दंड दिया जा रहा है राजन? हस्तिनापुर और मार्तिकावत की मान मर्यादा की लड़ाई में मेरी इच्छाओं और मेरे सम्मान की बलि चढ़ा दी गई है। मुझे मेरे होने वाले पति शाल्वराज ने स्वीकार नहीं किया। एक हरण की हुई राजकुमारी से कौन विवाह करना चाहेगा? मेरी आपसे विनती है कि एक क्षत्रिय वंशी राजकुमारी की आन की रक्षा करें, मेरे साथ न्याय किया जाए। राजकुमारी अंबा के प्रश्नों को सुनकर हस्तिनापुर की राजसभा असमंजस में पड़ जाती है। विचित्र वीर और सभी मंत्री किसी उपाय की उम्मीद से भीष्म की ओर देखते हैं, क्योंकि न्याय मांगती अंबा ने आखिर में पूरी सभा में ये चिल्ला चिल्ला कर कह दिया था कि जिसने मेरा अपहरण करके मेरी ये दुर्दशा की है, अब वही मुझसे विवाह करके मेरा सम्मान मुझे लौटाएगा। एक बार फिर यहां भीष्म की प्रतिज्ञा किसी बेकसूर के लिए न्याय के आगे बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। ये सभी जानते थे भीष्म कभी भी विवाह नहीं कर सकते। अंबा के प्रश्नों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर न्याय न पाकर राजकुमारी अंबा हस्तिनापुर की राजसभा में चीख चीख कर भीष्म को अभिशाप देती है। मैं तुम्हें अभिशाप देती हूं, जिस प्रतिज्ञा और इच्छा मृत्यु के वरदान के घमंड में तुमने मुझ निर्दोष का इतना बड़ा अपमान किया है, एक दिन मैं ही तुम्हारा काल बनकर सामने आऊंगी भीष्म। इसके बाद अंबा का क्या हुआ कुछ पता नहीं। किसी को नहीं पता कि अंबा वहां से कहां गई। आगे इस रहस्य से भी शायद पर्दा हटे। देखते ही देखते विचित्र वीर के विवाह को 7 वर्ष बीत गए, लेकिन कुरु वंश का कुल दीपक नहीं जन्मा। राजमाता सत्यवती, भीष्म, हस्तिनापुर की राजसभा और प्रजा सभी परेशान थे। और फिर एक दिन अचानक बड़ा ही दुखद समाचार आया कि विचित्र वीर चल बसे। शुरू में किसी को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मृत्यु से बड़ा सत्य और क्या हो सकता है। एक बार फिर हस्तिनापुर शोक में डूब गया। हुआ यूं था कि दो दो सुंदर रानियों को पाकर जवान विचित्र वीर अत्यधिक कामासक्त हो गए थे, सेक्सुअल प्लेजर के पीछे पागल से हो गए थे। 7 वर्षों तक दिन रात लगातार भोग संभोग में डूबे रहने की वजह से उन्हें क्षय रोग टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। फिर बड़े से बड़े वैद्य भी विचित्र वीर का इलाज नहीं कर पाए। आखिर तक वो स्वस्थ हुए ही नहीं। इसीलिए बीमारी की वजह से विचित्र वीर की कोई संतान भी नहीं हुई। सिंहासन फिर एक बार राजा के बिना खाली पड़ा था। हस्तिनापुर के लिए ये बहुत ही विकट स्थिति थी। हरेक के मन में यही सवाल था, क्या चंद्रवंश का सूरज डूब गया? अब शायद माता सत्यवती को इस बात का एहसास हुआ हो कि धन वैभव सत्ता नीति युक्ति सब अपने वश में होते हुए भी सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं चलता। आखिरी फैसला तो ईश्वर के हाथ ही होता है। सत्यवती अपने दो दो होनहार जवान बेटों को समय से पहले ही खो चुकी थी। अब उन्हें महाराज शांतनु की वंश परंपरा को आगे ले जाने के लिए गंगा पुत्र भीष्म से ही कहना पड़ा। तब भीष्म ने बड़ी विनम्रता से माता सत्यवती से कहा, राजमाता, मैं त्रिलोकी का राज्य ब्रह्मा का पद एवं इनसे भी ऊपर है मोक्ष, उसकी कल्पना का भी परित्याग कर सकता हूं, परंतु सत्य का त्याग नहीं कर सकता। भूमि अपनी गंध छोड़ दे, जल सरसता छोड़ दे, तेज अपना रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श भाव छोड़ दे, सूर्य अपना प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, इंद्र अपना बल विक्रम छोड़ दे, और चाहे स्वयं धर्मराज अपना धर्म छोड़ दे, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। यह आप भी जानती है माते। यदि भीष्म विवाह करना चाहते तो उसी दिन अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते थे जिस दिन अंबा ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए उनसे विनती की थी कि उससे विवाह कर लें। उससे भी पहले पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से कराने के बदले में दास राज के आगे वो भीष्म प्रतिज्ञा ही क्यों करते? लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह महत्वपूर्ण था कि अब आगे महाराज शांतनु के वंश का क्या होगा। तब कोई और उपाय न पाकर माता सत्यवती ने भीष्म से अपने बेटे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जो कि महाराज शांतनु से विवाह से पहले जन्मा था, उसके बारे में सब कुछ बता दिया और उन्हें यह आदेश दिया कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण भेजा जाए, मैं उससे शीघ्र मिलना चाहती हूं। अब मेरा वही पुत्र तुम्हारे पिता महाराज के वंश को आगे बढ़ाएगा। भीष्म को राजमाता सत्यवती का यह उपाय सही लगा। उन्होंने कहा, अवश्य माते, मैं इसी समय कृष्ण द्वैपायन को हस्तिनापुर ले आने की व्यवस्था करता हूं।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।